खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन का कलाम सच्चा और बरहक है और उसका पाक रूह हर रोज़ हम सब की रहनुमाई के लिए तैयार है। इन बरकात से, इन नेमतों से ईमानदार जब वाकिफ़ होते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत से कैदखानों में बहुत से मसीही कैदी हैं और वो उस कैद खाना में जहाँ पर ना उनका भाई है, ना माँ है, ना बेटा है, ना बहन है, ना बीवी है, अगर शादीशुदा हैं तो वहाँ पर उनकी हौसला अफजाई के लिए कौन खड़ा है? खुदा का पाक रूह, खुदावंद के फरिश्तगान और बहुत दफ़ा खुदावंद खुद वहाँ पर आम मौजूद होता है। पालूस के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद उसकी कैद में जाते हैं और कहते हैं कि तेरे लिए बहुत सी मुसीबतें और मुश्किलें तैयार हैं जिनको तू सहेगा। पत्रस के लिए खुदा का फरिश्ता आता है और उसे उठाता है कि उठ, वो इतनी गहरी नींद सो रहा है, उसे उठाता है और कहता है कि दरवाज़ा खुला है, रहाई पा। और पतरस की ज़िंदगी, उसकी कैद हम सब ईमानदारों के लिए बहुत ही क्या कहते हैं कि उम्दा बरकत और तसल्ली का बायस है। ज़बूर की किताब में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है और हम जान सकते हैं कि पतरस सो रहा है गहरी नींद, सो रहा है इतनी गहरी नींद सो रहा है कि फरिश्ते ने उसे हला कर उसके क्या कहते हैं कि उसे हला कर उठाया कि उठ। हम ईमानदारों को मसीह में इतना एतकाद होना चाहिए चाहे कैसे भी हालात में हों कि हमारा रब खुदावंद यहोवा यरी सब कुछ मुहैया कर सकता है। सो उन तमाम कैदियों के लिए इत्मीनान और तसल्ली कौन मुहैया करता है? खुदा खुद, खुदा पाकरू, यीशु मसीह और बहुत दफ़ा वो अपने फरिश्तगान को भी भेजता है। सो इसलिए आए, बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि तुम दुनिया का नूर हो। आए हम कलाम पाक में से अपनी शख्सियत के बारे में, अपने नाम, अपनी मेराज के बारे में सीखें। और पांचवी आयत में लिखा है, पालूस रसूल अभी बात कर रहा है और कहता है कि पांचवें बाब की पांचवी आयत, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुतपरस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मेरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाजल होता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमने पिछले दिनों में देखा कि ईमानदारों को निजात जो मिलती है उसे कोई भी उसे छीन नहीं सकता, लेकिन हमारी मेरास हमसे छीनी जा सकती है। सो बाइबल मुकद्दस जब पालूस रसूल इस बात को कहता है कि लालची, बुतपरस्त, झूठे, फरेब देने वाले, गुनाह में ज़िंदगी बसर करने वाले ईमानदार अगर मुसलसल तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी बुरी राहों से नहीं फिरेंगे, तो वो अपनी मेरास जो खुदा की बादशाही में, उसमें उनकी कुछ मेरास नहीं होगी। सो मेरास से मुराद यानी के हर एक ईमानदार को उसके कामों के मुआफिक अजर मिलेगा और अजर कमाना पड़ता है। जब हम मजदूरी करते हैं तो मजदूरी का क्या हमें मिलता है? अजर, सिला या बदला, या उस मजदूरी की हमें क्या मिलती है? रकम मिलती है। सो अगर हम इस जमीन पर रहते हुए मसीह में ईमान लाए हैं, मसीह में जिंदगी शुरू की है और बाद में कहा कि नहीं जी, जिंदगी को छोड़कर दुनियावी बातों में लग जाएंगे, तो आसमान पर हमारा हिस्सा क्या होगा? हो सकता है इतना, हो सकता है कुछ भी नहीं। उस नौकर की मानत जिनको अशरफियां दी गई, एक ने एक अशरफी से 10 बनाइयां, उनको कि उसको क्या मिरास मिली? 10 शहरों पर हुकूमत कर। दूसरे ने एक अशरफी से 5 अशरफियां कमाई, उसको क्या मिला? तू भी 5 शहरों पर हुकूमत कर। शिगिर्दों ने अपना सब कुछ छोड़कर मसीह के पीछे हो लिए और यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसराइल के 12 कबीलों पर क्या करोगे? हुक्मरानी करोगे, उनके क्या होंगे? उनके हाकम होंगे, काजी होंगे और तख्तों पर बैठकर उनके फैसले करोगे। और फिर करंथियों के खत में लिखा गया है कि बहुत दफ़ा ईमानदारों में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वो लड़ाई झगड़े के लिए अदालतों और कचहरियों में भागते हैं। पालूस रसूल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम दुनिया का इंसाफ करोगे? और फिर आगे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे? सो ईमानदारों को बहुत से मुख्तलिफ एजाज या मिरास मिलेगी, लेकिन कैसे? उनकी ज़मीनी ज़िंदगी जैसी होगी। अगर हम मकई लगाएंगे तो मकई के ही क्या कहते हैं खेत को हासिल करेंगे, उसमें मतीरा या खरबूजा नहीं लगेगा। इसलिए जिस दिन आप और मैं यीशु पर ईमान लाए, इसके बारे में मेरे साथ एक हवाला देखें। मैं चाहता हूं कि हम इस पर वक्त गुजारें, इस बात को समझें, क्योंकि बहुत दफ़ा खुदा और मसीह की मीरास में कुछ हिस्सा नहीं। लोग इस बात को कहते हैं कि जी आप निजात अपनी खो देंगे, आपको हमेशा की ज़िंदगी का आराम नहीं मिलेगा, आप दोजक में जाओगे या आपको कभी हमेशा की ज़िंदगी नसीब नहीं होगी। पालूस रसूल यहाँ पर यह बात नहीं कह रहा। इफिसियों 2 उसकी 8 आयत मेरे साथ निकालें। इफिसियों 2 उसकी 8वीं आयत, पालूस रसूल जब मीरास की और नजात की बात करता है तो वो उसे वाज़ह तौर पर कर देता है। मीरास काम से कमाई जाती है, जिसे बाइबल मुकद्दस कहती है नेक अमाल। निजात ईमान से मिलती है, जिसमें बंदा क्या करता है? यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है। सो इफिसियों 2 उसकी 8वीं आयत, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। ईमान के वसीला से, खुदा के फजल से क्या मिली है? निजात मिली है। और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। हमारी तरफ से क्यों नहीं? जवाब लिखा है, और ना ईमान के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। निजात में ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने यीशु मसीह का हाथ बटाया है इसलिए मैंने निजात कमाई है। कोई भी निजात को, हमेशा की ज़िंदगी को, रासबाजी को कमा नहीं सकता जो यीशु मसीह में है। तो क्या लिखा है? ताकि कोई फख्र ना करे। सादा लफ्ज़ों में निजात यीशु मसीह के वसीला से है, उस पर ईमान लाने से है, किसी ईमान से नहीं, क्योंकि कोई भी कमा नहीं सकता। निजात मिलती है तोहफे में। इसलिए आज इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा जो इब्लीस ईमानदारों को कलीसियाओं में और बहुत से दूसरे कबीलों और मज़हब में फैला रहा है वो यही है कि तुमको कुछ करने की ज़रूरत है कि तुम खुदा के पसंदीदा बनो। जो काम निजात के बाद करने की ज़रूरत है लोग पहले कर रहे हैं ताकि निजात हासिल कर लें। सो निजात ईमान से है, लेकिन हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म ही नहीं होता। जब हम निजात पा जाते हैं तो 10वीं आयत हमें खुदा का मकसद याद दिलाती है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं। हमारा बनाने वाला कौन है? खुदा है। और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। खुदा ने हम सबको तैयार किया है कि नेकियां करें, नेक अमाल करें, नूर के फर्जंदों की तरह ज़िंदगी बसर करें। उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। खुदा ने आप में से हर एक के लिए उन नेक अमाल को मुकम्मल तौर पर तमाम किया है, तैयार किया है, ताकि हम उनको करें, ताकि हम इस ज़मीन पर मकसद के साथ ज़िंदगी बसर करें। जिस किसी ने भी ये कांगो बनाई थी उसने इसी मकसद के लिए बनाई कि जब बजे तो सुनने वालों को सरूर मिले। फाड़ लो पड़ गए आइज़क, इसलिए उन नेक माल के वास्ते मखलूक हुए, हमें नेक माल के वास्ते मखलूक किया गया है। जब हम नेक माल करते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपके इमाल से आपको अजर मिलेगा, ये दुरुस्त है, ये बाइबल मुकद्दस की बात है कि जिस तौर से हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे उसी तौर से उसका अजर पाएंगे। सो निजात यीशु मसीह के कफारे से है। यहाँ पर हम ज़िंदगी का सफ़र जिसे मसीही ज़िंदगी कहते हैं, मसीही ज़िंदगी में नेक अमाल है, यानी कि सच्चाई के साथ ज़िंदगी बसर करना, यानी कि रासबाजी की ज़िंदगी बसर करना जिसमें किसी किस्म की पालूस रसूल कहता है बात ना हो। और वो कौन सी बातें हैं, चंद एक बातों को कहता है। तुम में तुम खूब जानते हो किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। ये चंद एक काम हैं जो मसीह की बादशाही में मिरास का बायस नहीं बनेंगे। आए हम देखें कि मिरास क्या है, बदला क्या है, अजर क्या है। मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें। मुकाशफा की किताब, मेरे साथ निकालें मुकाशफा की किताब। बहुत दफ़ा मसीही लोग डर जाते हैं, कहते हैं मुकाशफा की किताब पढ़नी नहीं चाहिए, बंदा पागल हो जाता है। बुरी बात है, ये गलत मालूमात है, ये गलत अकीदे की बात है। जादूगर मुकाशफा की किताब को इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के लिए, और बहुत दफ़ा मसीही लोग इस बात को मान लेते हैं कि अगर कोई मुकाशफा की किताब पढ़ेगा, मुकाशफे में आग है, ये है, वो है, बंदा पागल हो जाएगा। मैं कई दफ़ा पढ़ चुका हूं, अभी तक तो मैंने कोई पागलों वाली बात नहीं की। खुदा का कलाम पक्का सच्चा और वाहद सच्चाई का ज़रिया है। सो मुकाशफा की किताब में हमें सात कलीसियाओं का जिक्र मिलता है, दूसरे और तीसरे बाप में। दूसरे और तीसरे बाप में हमें कलीसियाओं का जिक्र मिलता है, जैसे कि इफिसस, स्मरना, पुर्गमुम, थावत्रीता, सर्दीस, फलदेफिया और लोदिकिया। ये सात कलीसियाओं का जिक्र मिलता है। उन सात कलीसियाओं में किन से बात हो रही है, ईमानदारों से। कलीसिया में कौन रहते हैं, ईमानदार। कलीसिया उसी को कहा जाता है जो नए सिरे से पैदा हुआ है, जिसने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। यीशु मसीह खुश करने के लिए किसी को भी नहीं कहता कि तुम मेरी कलीसिया हो। यीशु मसीह सच को सच बयान करता है। तो जब कलीसिया से बात की जा रही है, तो कलीसिया के फरिश्तों को सातों कलीसियों में लिखा गया है कि कलीसिया के फरिश्ते को लिख, इफिसस के फरिश्ता को लिख, स्मरना के फरिश्ता को लिख, पुर्गमुम के फरिश्ता को लिख, थावारीता के फरिश्ता को लिख, सर्दीस के फरिश्ता को लिख, फलदिफिया के फरिश्ता को लिख, लोदिकिया के फरिश्ता को लिख। फरिश्ता यहाँ पर पासबान को जाहिर किया गया है, और चिरागदान कलीसिया को। सो इन सात कलीसियों में सात अजर का जिक्र मिलता है, और इन सातों अजरों को जब आप पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर, मेरे साथ पहले पढ़ें जी सातवीं आयत को पढ़ें। इफिसस की कलीसिया, दूसरा बाब, सातवीं आयत। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालब आए, जो गालब आए, मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। जो गालब आए, शर्त यह है, यीशु मसीह की हजूरी में सब ईमानदार जाएंगे, लेकिन गालब आने वाले बहुत कम होंगे। मिसाल के तौर पर मेरे साथ देखें, इससे पहले आगे जाएं ताकि इस बात को हम वाज़ह तौर पर समझ लें। फिलिपियों के नाम दूसरा तमोथियस चार बाप, दूसरा तमोथियस चार बाप। यहाँ पर पालूस रसूल अपने बारे में बात करता है तमोथियस को लिखते हुए। जो गालब आए, यानी कि जो कोई कामयाब मसीही ज़िंदगी बसर करे, जो कोई जिसमें माएँ हैं कि ऐसी मसीही ज़िंदगी बसर करें जिसमें वो अपने खामंद की भी खामंद की ताबेदारी करें, खुदावंद को अपना खुदा माने, अपने बच्चों को अपने पूरे दिल पूरी जान से मसीह की तालीम देने वाले बने। खामदों के लिए जो शादीशुदा हैं कि वो बाप हैं, तो उनको अपने बेटों के लिए ऐसी मिसाल ऐसा नमूना बनने की ज़रूरत है ताकि कल को वही बेटा अपने बाप की नुमाइंदगी करे। ये गहरी बातें हैं लेकिन सादा है। जैसे यीशु मसीह कहता है, जो कुछ मैं अपने बाप को करता देखता हूँ वही करता हूँ। आप जो बाप हैं, जो कुछ आप करते हैं आपके बेटे आपको देख के करेंगे। इसलिए जो कोई गालब आए ऐसी ज़िंदगी, यानी कि कामयाब मसीही ज़िंदगी, जिसमें आपकी ज़िंदगी में यीशु का नाम अव्वल, अपनी बीवी से बगैर किसी शर्त की मोहब्बत, अगर बेटे हैं तो माँ बाप की ताबेदारी, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अवलियत। सो पालूस रसूल तमोथियस को उसका रहानी बाप होते हुए इस कामयाब ज़िंदगी के बारे में बयान करता है कि तुम्हें अजर मिलेगा अगर तुम मेरी नक्शे कदम पर चलोगे, मेरी मानत बनोगे। पालूस रसूल कहता है, पहली आयत से पढ़ते हैं ताकि हमें पूरी बात का पता हो कि आगे पीछे क्या है। दूसरा तमोथियस 4 उसकी पहली आयत, दूसरा तमोथियस 4 उसकी पहली आयत। खुदा और मसीह यीशु को, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके जहूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ। तमोथियस को पालूस कहता है, मैं तुझे ताकीद करता हूँ, नसीहत करता हूँ, सलाह करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बावक्त मुस्तहिद रह, हर तरह के तहम्बल और तलीम के साथ संभाल दे, समझा दे और मलामत कर, और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तलीम की बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। उसे कहता है, इन बातों से खबरदार रहा, इसलिए तलीम देता रहा क्योंकि वक्त आने वाला है जिसमें लोग गुमराही की तरफ ज़्यादा जाएंगे और अपने लिए किसी को भी उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवजा होंगे। बहुत दफ़ा कहानियाँ यानी कि झूठी कहानी, जो इंसानी कहानियाँ हैं, सच को छोड़कर, कलामे पाक को छोड़कर इंसानी कहानी और इंसानी कहते हैं कि बातों में मगन हो जाना। और 5वीं आयत में कहता है, मगर तू सब बातों में होशियार रह। आपसे मैं कहता हूं, आप सब बातों में होशियार रहें, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। भाइयों, यीशु मसीह के लिए दुख उठाना है, बशारत का काम उसकी गवाही देनी है और अपनी खिदमत को अंजाम देना है। अपनी अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है। अगर खुदा ने आपको एल्डर की खिदमत के लिए बुलाया है, अगर खुदा ने आपको अच्छे खामन दफ्ते बाप और किसी और खिदमत के लिए बुलाया, उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसे पूरा करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। पालूस जानता था कि मैं जल्द इस दुनिया से रुखसत होकर मसीह के पास चला जाऊँगा, कि मैं जल्द मरने वाला हूँ, मैं जल्द इंतकाल करने वाला हूँ। पालूस ये बात जानता था। और 7वीं आयत में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, यानी कि मैं गालब आया, उस मकसद को पूरा किया, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैं गालब आया। दौड़ कब ख़त्म होती है? जब हम उसे मुकम्मल करते हैं। गालब कब आते हैं? जब कोई पहलवान किसी पहलवान से लड़ता है तो उससे उस पर फतह पाकर गालब आता है। मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, वो ईमान में कायम रहा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, ना सिर्फ मुझे बल्कि उन सब को भी जो उसके जहूर के मुंतजिर आरजूमंद हैं। कौन सा ताज लिखा है? रास्तबाजी का ताज, रास्तबाजी का ताज। यीशु मसीह की हजूरी में उसके सर पर रास्तबाजी का ताज होगा और लोग देखकर कहेंगे कि पालूस रसूल। सो हम इस जमीन पर जब गालबाना जिंदगी बसर करेंगे, ऐसी कामयाब मसीही जिंदगी जिसमें यीशु मसीह आपकी जिंदगी में अव्वल, आपके घरों में यीशु मसीह, जैसे यशुआ कहता है कि रही मेरी और अब मेरे घराने की बात, तो हम खुदावन की प्रस्तुति करेंगे खुशियों में नहीं बल्कि दुख तकलीफ मुसीबत हर हालात में। ये नहीं कि दुख मुसीबत और परेशानी आए तो पालूस रसूल की वो बात पूरी हो कि किसी बुतपरस्त और लालच का लालची का जो बुतपरस्ती के बराबर है खुदावन की बादशाही में कुछ मेराज नहीं। सो हमें मुश्किल वक्त में ये नहीं कि कोई गवांडी आए और कहे कि मैं फलां पीर को जानती हूँ, वहाँ पर चलते हैं, तो मैं आपको हुक्म दूंगा यीशु मसीह में कि उस बहन को भाई को मलामत करें कि मैं जिंदा को छोड़कर क्यों किसी मरे हुए के पीछे जाऊं, मैं इंसानों को छोड़कर खुदा को छोड़कर क्यों किसी इंसान के पीछे लगूं। मलामत करें कि तू सवाए किसी अपने खुदा के किसी और की इबादत ना करना। स्वयं खुदा के हुजूर झुकें। आज आप सबसे यही बात है कि जो कुछ आप इस ज़मीन पर करते हैं भला, उसकी मीरास आसमान पर आपके लिए बनती है। सो ये आप पर है, ये मुझ पर नहीं। मैं अपनी मीरास खुद बनाऊंगा कि आसमान में मेरा कौन सा ख़जाना होगा। आप अपनी मीरास खुद बनाएंगे। कादर मुतलिक खुदा, आज के कलाम के वसीला से हम सब की खुदा खुदा तरबियत और नसीहत हो और यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए।